नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।